मेरे नौजवान साथियों नमस्कार। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं आशा कार्यकर्ताओं के बारे में आप सबसे कुछ अपने विचार साझा करूंगा, लेकिन इससे पहले एक जो बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है क्वाड शिखर वार्ता को लेकर के, आइए इसे थोड़ा सा देख लेते हैं। क्वाड के बारे में हम लोगों ने बहुत सी बातें की हुई हैं पहले से ही। यह क्या है, कौन से देश इसके सदस्य हैं, इसका मूल उद्देश्य क्या है, चीन की विस्तारवादी नीति को रोकने के लिए किस तरीके से लगातार अपनी कोशिश में लगा हुआ है और भारत की इसमें किस प्रकार से बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है, इसके बारे में हम लोगों कई बार बातें की हैं। उन्हें दोहराने का यहाँ कोई अर्थ नहीं है और मेरा पूरा विश्वास है कि आप सब भी कम से कम जो बातें मैंने अभी कही हैं उनके उत्तर देने में सक्षम हैं। हम अब सीधे इस पर आते हैं कि अभी जो टोक्यो में क्वाड देशों के जो चार जो नेता हैं वो मिले, उन्होंने क्या फैसले किए हैं। केवल हम उन पर अपनी बात सीमित रखते हैं। एक बात मैं दोस्तों यहाँ आप लोगों से कहना चाहूंगा और वो ये कि जब कोई भी घटना घटित होती है ना, तो आप उसके बहुत विस्तार में जाने की कोशिश मत कीजिए। बहुत ही जो सामान्य सी और जो मूलभूत बातें हैं केवल वहीं तक अपने को सीमित रखिए। उसका कारण यह है कि आप अपने जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनके फॉर्मेट को उठाकर देखिए किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, और सीधी सी बात है कि जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपकी तैयारी उसी के अनुकूल होनी चाहिए। तो अभी जो क्वाड वार्ता हुई है, शिखर वार्ता, अगर हम सोचें, अपने से सवाल करें कि किस तरह के प्रश्न इस पर पूछे जा सकते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो प्रश्न पूछा जा सकता है उसका जो आधार होगा केवल यह होगा कि अभी जो निर्णय लिए गए हैं वो कौन कौन से हैं, किस तरह के हैं, और दूसरा यह है कि इन निर्णयों का क्या प्रभाव पड़ेगा। जब हम प्रभाव की बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में हो सकता है, चीन के संदर्भ में हो सकता है, विश्व के संदर्भ में हो सकता है, बस केवल यही। अगर आप इन दो पॉइंट्स को तैयार कर लेते हैं तो फिर प्रश्न चाहे घुमा फिरा करके किसी भी तरह का क्यों ना पूछा जाए, आप बकायदे उनका उत्तर दे सकेंगे, इस पर आप विश्वास कीजिए। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अभी क्वाड वार्ता संपन्न हुई है, इसको लेकर के एडिटोरियल कमेंट्स बकायदे लिखे जाने लगे हैं। आज मैं आपको कुछ प्रोवाइड भी कर रहा हूं, आगे चल करके इस पर आर्टिकल्स भी आएंगे। तो देखिए, जो एडिटोरियल कमेंट लिख रहा है या जो अपना आर्टिकल लिख रहा है वो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को ध्यान में रख करके नहीं लिख रहा है ना, वो तो अपनी बात रख रहा है, अपने ढंग से कह रहा है। यहां तक कि फिर जो मंथली मैगजीन्स आएंगे उन मैगजीन्स में भी डेफिनेटली इसके बारे में लिखा जाएगा, तो बहुत विस्तार के साथ इस पर लिखेंगे। ठीक है, वो भी अपने ढंग से आपको पूरी की पूरी जानकारी प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आपको ये देखना होगा कि ये जो मछली रखी हुई है पेड़ की डाल पर, तो आपको चूंकि उसकी आंख को भेदना है तो आप अपने को आंख तक सीमित रखें। आप क्यों उस मछली के पूरे स्वरूप को जानना समझना चाह रहे हैं, बस इस बात का आप सिविल सर्विस की तैयारी करते समय खासकर ध्यान रखें। तो दोस्तों, अगर हम आंख के ही नजरिए से क्वाड के अभी शिखर सम्मेलन को देखना चाहें तो देखिए बहुत ही स्पष्ट है, जो सबसे जो महत्वपूर्ण जो डिसीजंस लिए गए हैं इसमें आप कह लीजिए, वे तीन डिसीजंस हैं सबसे महत्वपूर्ण, और इन तीनों में भी जो सबसे टॉप पर है वह यह है कि बकायदे क्वाड के जो चारों देश हैं इन्होंने फैसला किया है कि ये मिलकर के अब इस क्षेत्र में यानी कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में लगभग $50 अरब खर्च करेंगे। $50 अरब आंकड़ा आपके दिमाग में क्लियर होना चाहिए, $50 अरब, और 5 साल के दौरान ये पैसा खर्च किया जाएगा। किसके लिए खर्च किया जाएगा, वह दिया हुआ है बकायदे बुनियादी सहायता प्रदान की जाएगी, यानी यूं कह लीजिए कि वहां जो बुनियादी ढांचा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। अब आप देखिए कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है ये किस चीज को, किस बात को इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि जब आप प्रभाव को डिस्क्राइब करेंगे, बताना चाहेंगे कि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपको पैरेलल मालूम होना चाहिए। बहुत दिनों से आप इस बात को पढ़ रहे हैं कि बकायदे इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो चीन की एक योजना है, बहुत बड़ी योजना है, बेल्ट और रोड इनिशिएटिव, तो यही कर रहा है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, सड़कें बना रहा है, बंदरगाह बना रहा है, रेल लाइन से जोड़ रहा है ताकि पूरी दुनिया में उसकी पहुंच हो जाए। तो इसके जवाब में ये बुनियादी ढांचा, ठीक है तुम बना रहे हो तुम बनाओ, हम भी पैरेलल बना रहे हैं, तो इससे सीधे सीधे जो चीन की जो विस्तारवादी नीति है वो थोड़ी सी रुक सकेगी, और साथ ही साथ इसमें बकायदे निवेश भी किया जाएगा, बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा उसमें बकायदे निवेश किया जाएगा। और जो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि चीन कर क्या रहा है कि इसी पहल के तहत दूसरे देशों को कर्ज दे रहा है, ये नहीं कि वो अपनी तरफ से बना रहा है। आप देखिए श्रीलंका कर्ज में बुरी तरह से फंसा हुआ है, नेपाल की भी लगभग वही स्थिति है, पाकिस्तान की भी वही स्थिति है, बलूचिस्तान में किस तरीके से चीन के खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। तो बकायदे अब वो जो देश है वो कर्ज में फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर वो निकलना चाहें अब चीन के इस चंगुल से तो क्या उपाय हो सकता है? तो इन क्वाड देशों ने कहा है कि नहीं, हमारे पास उपाय है और हम आपकी ये जो समस्या है कर्ज से संबंधित, इसे भी देखते हैं कि कैसे हल किया जा सकता है। तो देखिए चीन के खिलाफ फिर से यहां आपको एक वक्तव्य दिखाई दे रहा है। और तीसरा निर्णय इन्होंने लिया है, बकायदे जो संयुक्त वक्तव्य जारी किया है वो ये है कि समुद्री नियम आधारित पूर्वी और दक्षिण चीन जिसमें शामिल हैं कुछ तरीके तैयार किए जाएंगे समुद्र से संबंधित। अब इस समुद्र से संबंधित क्या है, आइए आप हम इसे भी देख लेते हैं। इसके लिए बकायदे जो देश हैं उन्होंने हिंद प्रशांत सामुद्रिक क्षेत्र जागरूकता साझेदारी, मैं रिपीट कर रहा हूं, हिंद प्रशांत सामुद्रिक क्षेत्र जागरूकता साझेदारी, इसकी शुरुआत कर दी है कि मतलब हम एक दूसरे को जागरूक करते रहेंगे। इसका जो मूल उद्देश्य वो ये है कि इस पूरे के पूरे क्षेत्र में जो मछलियां हैं उनकी अवैध पकड़ हो रही है, अवैध आपके लिए मछली मारी जा रही है, और इसमें जो सबसे बड़ा हाथ है वो चीन का है, और इसकी वजह से तो बहुत सी विविधताएं भी खत्म हो रही, जैव विविधता जो मछली से संबंधित है वो नष्ट हो रही है। तो सीधी सी बात है कि इस पर भी सहयोग करेंगे सरकार, जो सरकारी हैं चारों, तो इससे जो चीन के का जो अवैध शिकार है मछलियों के लिए उस पर रोक लग सकेगी। और साथ ही साथ इन्होंने ये भी कहा है कि जो प्राकृतिक और जो मानवीय आपदाएं आती हैं उस पर भी एक दूसरे का सहयोग किया जाएगा और जागरूकता दिखाई जाएगी। ये निर्णय लिए गए हैं और ये निर्णय कम महत्वपूर्ण नहीं है, सीधे सीधे नाम तो नहीं लिया गया है लेकिन साफ दिखाई दे रहा है कि ये चीन का जो विस्तार लगातार बढ़ता चला जा रहा है उसे रोकने की एक कोशिश है और एक बहुत ही सफल कोशिश है। इससे पहले आपको मालूम है कि इन चारों देशों ने मिलकर के जो इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फोरम बनाने की घोषणा की जिसके अब 13 सदस्य राष्ट्र हो चुके हैं, कल हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी। तो अब आप देखिए कि इसका सीधा संबंध तो क्वाड से नहीं है लेकिन कहीं ना कहीं है भी, इस रूप में कि चार देश इसमें है ही है फोरम में। लेकिन इसके साथ ही साथ क्या है, इसके साथ ही साथ यह भी बकायदे है कि जो दूसरे देश 9 इसमें शामिल हैं वे सब के सब इसी क्षेत्र के हैं और ये सब चीन से कहीं ना कहीं घबराए हुए हैं और कहीं ना कहीं परेशान भी हैं। तो इस तरीके से एक और पैरेलल संगठन तैयार कर लिया गया है ताकि इन देशों में भी कॉन्फिडेंस जनरेट हो सके और जरूरत पड़ने पर क्वाड को इनका सहयोग भी मिल सके। तो कुल मिलाकर के फ्रेंड्स अभी टोक्यो में जो क्वाड शिखर सम्मेलन हुआ है उससे यह रिजल्ट निकलकर हमारे सामने आया है और मैं चाहूंगा कि अब जब भी आपको इस पर एडिटोरियल कमेंट्स या आर्टिकल पढ़ने को मिलते हैं तो प्लीज आप इन्हीं संदर्भों में उसके पॉइंट्स नोट करते चले जाएं, आपकी बहुत अच्छी तैयारी इस टॉपिक पर हो जाएगी। दोस्तों कल मैंने आशा कार्यकर्ताओं के बारे में आपसे बात की थी और मैंने बताया था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक एक इमर्ज हो रहा है और आज जिस तरीके से उस पर एडिटोरियल कमेंट्स और आर्टिकल्स लिखे गए हैं उससे ये बात सिद्ध हो रही है कि इसे तरजीह दी जा सकती है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। इस विषय पर आप थोड़ी सी अच्छी तैयारी करें। आज के दैनिक भास्कर में एक आर्टिकल इसको लेकर के आया है और वो मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है कि ये जो आशा कार्यकर्ता है एक प्रकार से वर्ल्ड मॉडल बनकर के उभरी हैं। तो ये जो आशा कार्यकर्ता हैं ये क्या हैं आपको मालूम होना चाहिए, मैं थोड़ी सी बातें जो हैं मेरी जानकारी में वो मैं आपके सामने रख रहा हूं। बेसिकली ये जो आशा है ASHA, हिंदी में जब हम आशा कहते हैं तो यही लगता है कि एक होप है, यानी कि ये ऐसी कार्यकर्ता हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में या शहर के जो बहुत ही पिछड़े और गरीब क्षेत्र हैं इन्हीं दो जगह इनकी नियुक्ति होती है, जहां 1000 की आबादी हो उस बीच में एक आशा कार्यकर्ता होती है और वो ग्रामीण क्षेत्र होगा या अगर शहरी क्षेत्र होगा तो वो शहर का बहुत ही गरीब क्षेत्र होगा, वहां एक आशा कार्यकर्ता होती है। तो सामान्य तौर पर हम ये मान सकते हैं कि ये एक तरीके से हमारे मन में होप पैदा कर रहे हैं या वहां के लोगों के मन में एक प्रकार का विश्वास जागृत कर रहे हैं हेल्थ के सेक्टर में खासकर। लेकिन इनफैक्ट इसका जो नाम पड़ा है, देखिए अंग्रेजी का अक्षर है अक्रेडिटेड, यानी कि जिसे सरकार मान्यता देती है, अधिमान्य भी कहीं कहीं इस शब्द का अर्थ मिलता है। तो ए हो गया सोशल, से एस हो गया, एच से हेल्थ हो गया, क्योंकि आशा है ना, एस एच और फिर एक्टिविस्ट का हो गया ए आशा, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, यानी कि सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त ये ऐसे हेल्थ वर्कर हैं जो बहुत ही एक्टिव होकर के उन क्षेत्रों में काम करेंगे। तो सीधी सी बात है कि इसका संबंध सोशल हेल्थ से है। आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए कि इनका संबंध केवल सोशल हेल्थ से है। 2005 में इसकी शुरुआत की गई थी और इससे पहले भी, खासकर स्पेशली मैं छत्तीसगढ़ की एक योजना की बात करना चाहूंगा। छत्तीसगढ़ में एक योजना आई थी, इससे पहले चल रही थी मितानी योजना। मीत शब्द आप जानते हैं, मीत रे मेरे गीत रे, मीत मतलब मित्र दोस्त, मितानी उसका स्त्री रूप है, मितानी यानी कि सहेली सखी, है ना, ऐसी सहेली ऐसी सखी जो गांव में जाकर के काम कर रही है सरकार के बिहाव पर हेल्थ के सेक्टर में। तो जब इसकी बहुत चर्चा हुई तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर इसे लागू किया गया और उसी समय फिर जननी सुरक्षा योजना आई, ग्रामीण स्वास्थ्य योजनाएं शुरू की गई। तो ऐसा महसूस किया गया कि नहीं, एक लिंक के रूप में ग्रामीण क्षेत्रों में हमें कोई चाहिए। तो उसमें फिर आशा की नियुक्तियां हुई और जो नियुक्तियां होती हैं, दो तीन बात बहुत इंपॉर्टेंट होती। पहली तो ये महिलाएं ही होती हैं, दूसरी 98-90% जो महिलाएं होती हैं वो उन्हीं क्षेत्रों में रहने वाली होती हैं, वहीं रहती हैं, वो उन्हीं गांव की महिलाएं होती हैं, उनको थोड़ी सी ट्रेनिंग दे दी जाती है स्वास्थ्य वगैरह के बारे में और फिर वो वहां जागरूकता का काम करती हैं, स्वास्थ्य जागरूकता का, और साथ ही साथ उन्हें मदद भी करती हैं। जैसे मान लीजिए कि प्रसव कराना है तो उन्हें हॉस्पिटल तक ले जाना, उनकी सारी व्यवस्था करना, बच्चों का जो टीकाकरण होता है तो जरूरी टीका लगवाना, महिला जब गर्भवती है तो बकायदे उसको किस तरह के भोजन की जरूरत है, किस किस तरह से उसे स्वास्थ्य का ध्यान रखना है इसके बारे में उन्हें जानकारी देना, फिर जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखना, उनका पंजीकरण रखना, स्वास्थ्य योजनाएं बनाने में मदद करना। तो ये सारे काम आशा कार्यकर्ता करती हैं। तो दोस्तों, जो सामुदायिक स्वास्थ्य योजना है, जो कम्युनिटी हेल्थ प्लानिंग होती है, प्लान्स होते हैं, उनमें आशा कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा रोल है और एक बहुत बड़ी बात है, कह लीजिए भारत के लिए गर्व की बात है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हमारे आशा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। इस रूप में अब आपको ये देखना है कि ग्रास रूट लेवल पर जो वास्तव में काम कर रहे हैं, जो काम कर रही हैं, बिना उन्हें मान्यता दिए हुए हम अपने समाज में एक सार्थक बदलाव नहीं ला सकते और साथ ही साथ जो सरकारी योजनाएं हैं उन्हें सुचारू रूप से लागू नहीं कर सकते। इस एंगल से अब आपको आशा कार्यकर्ताओं के कार्यों का और उनकी भूमिका का मूल्यांकन करना होगा। तो दोस्तों, मुख्य विषय के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स आप सबको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। ईमेल लिखने वाले मित्रों को धन्यवाद देता हूँ और इन्हीं में से कुछ दोस्तों के नाम हैं: नीरज अरोड़ा, पंकज त्रिपाठी बलरामपुर उत्तर प्रदेश से, रमनदीप उत्तराखंड से, ब्रजेश सोनी, विजेंद्र चौहान हरिद्वार उत्तराखंड से, नीतीश राज साहेबगंज बिहार से, मयंक द्विवेदी कानपुर नगर उत्तर प्रदेश से, रोहितास गुर्जर जयपुर से और आलोक कुमार यादव कुशीनगर उत्तर प्रदेश से। आप सबका बहुत बहुत आभार। और दोस्तों, इसी के साथ ही आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को अब यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्कार।